मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, आज 13 अक्टूबर 2017 है, दिन है शुक्रवार, और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज के इस लाइफ मैनेजमेंट के लिए मैंने एक अलग तरह का विषय चुना है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह विषय आपको पसंद आएगा। हालांकि मैं सोच रहा था कि जो हम लोग मनुष्य की गरिमा और कार्य का सम्मान इस विषय पर बात कर रहे थे उसी को और आगे बढ़ाऊं, लेकिन इनफैक्ट मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद अब यह विषय पर्याप्त हो चुका है, क्योंकि आप लोगों के ईमेल के जरिए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब आप लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा सवाल रह नहीं गए हैं, तो फिर कहने का कोई ज्यादा महत्व भी नहीं रह जाता। तो मित्रों, आज मैंने आपके लिए एक नए विषय का चुनाव किया है और यह विषय भी मुझे KBC से मिला है, यानी कि कौन बनेगा करोड़पति से मिला है। अब आप ये मत समझ लीजिएगा कि मैं रात के 1.5 घंटे रोज KBC के साथ ही बिताता हूं। इत्तफाक होता है मित्रों, मेरी पत्नी इस प्रोग्राम को बहुत पसंद करती हैं, वो देखती ही देखती हैं, तो आते जाते मेरी निगाह पड़ जाती है। मैं भी देखता हूं और बड़े ध्यान से देखता हूं, जब भी देखता हूं ध्यान से देखता हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं 1.5 घंटे पूरा इसी के साथ बिताता हूं। तो बीच बीच में मुझे काफी कुछ अच्छी चीजें मिल जाती हैं, मैं उन्हें अपने जहन में रख लेता हूं और फिर वो आप लोगों तक अगर पहुंचाने लायक होती है तो पहुंचाने की कोशिश करता हूं, है ना। तो मित्रों, मैं पीवी सिंधु जो हमारी बैडमिंटन प्लेयर हैं और आज आइकॉन है, युवाओं की आइकॉन है, वो आई थी, आपको मालूम है, और अमिताभ बच्चन जी उनसे बात कर रहे थे। एक उन्होंने बड़ा खूबसूरत सवाल पीवी सिंधु से किया। मित्रों, मुझे मालूम है कि ओलंपिक में जब पीवी सिंधु अपना फाइनल खेल रही थी तो उसी दौरान मेरे पास NDTV से फोन आया था कि सर, ये जो मैच चल रहा है इसके खत्म होते ही हमें पीवी सिंधु पर एक आपका ब्लॉग चाहिए, तुरंत चाहिए। उस समय मैंने पीवी सिंधु के बारे में काफी कुछ पढ़ा, चीजें खोज की, और मित्रों सच पूछिए तो वो ठीक है कि वो ओलंपिक चैंपियन नहीं बन पाई, रनर अप रही, लेकिन इनफैक्ट वो बन भी जाती नहीं भी बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो मेरी श्रद्धा का पात्र तो बन गई। मैं श्रद्धा का पात्र की बात कर रहा हूं, मतलब इतनी संघर्षशील लड़की और सच पूछे तो इतनी अनुशासित शिष्या मैंने और किसी के बारे में नहीं सुना। विवेकानंद जी के बारे में तो मैं उतना जानता नहीं हूं, लेकिन वो भी अपने गुरु के प्रति जो उनके मन में श्रद्धा का भाव था, तो मैं उन्हें भी एक श्रेष्ठ शिष्य ही मानता हूं। लेकिन आधुनिक हमारे अपने समय में जिन्हें हमें देख रहे हैं, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसमें PV सिंधु लाजवाब है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मित्रों, उस समय अखबारों में काफी उनके बारे में छप भी रहा था और शायद वही चीज अमिताभ बच्चन जी के भी दिमाग में रही हो, तो उन्होंने एक प्रश्न किया। प्रश्न उन्होंने ये किया कि आप इस तरह की शिष्या हैं जिनकी खुलकर इतनी तारीफ गुरु उनका कर रहा है, कोच कर रहा है, और हमको ये भी पता है कि आपने बहुत त्याग किए हैं। इससे पहले उन्होंने बताया कि मैं 8 साल से ही पूरी तरह से इस बैडमिंटन के खेल में ही हूं और बस उन्हीं के पास हूं और अपना सीख रही हूं 8 साल की उम्र से। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि आपने बहुत त्याग किया है, बहुत त्याग किया है। मित्रों, हो सकता है कि अगर आप मेरे से ये प्रश्न करते तो मैं यही कहता कि हां हां किया है, क्योंकि त्याग का मतलब मालूम नहीं है। त्याग का मतलब हम संघर्ष से लगा लेते हैं कि अगर मैंने संघर्ष किया है तो मैंने त्याग किया, जबकि दोनों बिल्कुल अलग अलग है। पीवी सिंधु की मैं तारीफ इस बात के लिए करूंगा कि उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, मैंने कोई त्याग नहीं किया है। अद्भुत, उन्होंने परिभाषा ही बिल्कुल बदल दी। उन्होंने कहा कि मैंने कोई त्याग नहीं किया है, देखिए मैं तो 8 साल से बैडमिंटन खेल रही हूं और खेलने के लिए जो जो चीजें करनी चाहिए, जो जो मेरे कोच ने मुझे बताया, वो मैं कर रही हूं, और मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं करना चाहती हूं, मुझे करना अच्छा लगता है, और मैं बैडमिंटन खिलाड़ी बनना चाहती थी, मैं बहुत अच्छी खिलाड़ी बनना चाहती थी, और मैं ये जानती थी कि अगर मुझे जो मैं चाह रही हूं वो मुझे पाना है तो मुझे ये करना है, तो मैंने तो किया है, उसमें त्याग कैसा। मैंने कोई त्याग नहीं किया है। और फिर उन्होंने कहा कि अगर किसी ने त्याग किया है तो मेरे पेरेंट्स ने किया है। फिर उनके पेरेंट्स से अमिताभ बच्चन जी बात करने लगे और पता लगा कि दोनों ही वॉलीबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, दोनों ही, उनकी माँ भी बहुत अच्छी प्लेयर्स थी। हाँ, वो सर्विस में थी, लेकिन जब पीवी संधु की परवरिश की बात आई, जरूरत महसूस हुई, तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी। तो उन्होंने कहा कि अगर त्याग किसी ने किया है मेरे लिए तो मेरे पेरेंट्स ने किया है, मैंने कोई त्याग नहीं किया है। मुझे लगता है फ्रेंड्स, ये हमें सबको एक नई दृष्टि देने वाला वाक्य था, एक बिल्कुल नई परिभाषा थी, एकदम नई परिभाषा थी। त्याग हम कहते किसको हैं? त्याग का मतलब छोड़ देना नहीं है कि मुझे लड्डू खाना पसंद है तो मैंने लड्डू छोड़ दिया तो कोई त्याग कर दिया। अरे, लड्डू मैंने छोड़ा है तो या तो डॉक्टर ने बताया कि लड्डू छोड़ना पड़ेगा, या हेल्थ खराब हो रही थी, मोटा हो रहा था, तब लोगों ने कहा कि लड्डू छोड़ो। जो कुछ भी हो, तो ये जो मैंने लड्डू खाना छोड़ा, ये मैंने अपने हेल्थ के लिए, अपने हित के लिए छोड़ा है ना। अगर मैं सुबह 4 बजे उठता हूं तो अपने हेल्थ के लिए उठता हूं, मुझे अच्छा लगता है सुबह 4 बजे उठो, फ्रेश होकर के फिर वॉक करने जाओ, प्रकृति के बीच में रहो, तो मुझे अच्छा लगता है। इसमें मैं त्याग क्या कर रहा हूं? तो लोग क्या समझते हैं सामान्य तौर पर, कि मान लीजिए कि मैं 7 बजे उठता हूं, या बाकी सारे लोग 7 बजे उठते, मेरे साथ के लोग 7 बजे उठते हैं और मैं 4 बजे उठ रहा हूं, तो लगता है यार मैंने 3 घंटे का त्याग कर दिया, त्याग कर दिया। जो हम अपने लिए करते हैं वो कभी भी त्याग नहीं होता है। त्याग होता क्या है? त्याग वह होता है जो हम दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों के लिए जो हम छोड़ते हैं, दूसरों को जो देते हैं, वो त्याग होता है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, करोड़पति है, खरबपति है, राइट, वो संन्यास धारण कर लेता, मान लीजिए 50 साल की उम्र में वो सन्यासी बन जाता है, सब छोड़ छाड़ करके चल देता है, तो हम क्या सोचते हैं कि त्याग कर दिया, बहुत बड़ा त्यागी है, देखो उसने इतना सब कुछ छोड़ दिया। भैया, किसके लिए छोड़ा? अब इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं मित्रों। पहली बात तो यह है कि जो उसने छोड़ा है वो किसके लिए छोड़ा है। उसके अगर उत्तराधिकारी हैं, उसके अपने संतान हैं या उसके परिवार के लोग हैं, तो कोई त्याग नहीं है, क्योंकि वो उसको संभाल लेंगे। वैसे भी हम सबको एक दिन तो त्यागी बनना ही है, जिस दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी हम सब त्याग करके ही तो जाएंगे, क्या लेके जाएंगे अपने साथ, तो उस हिसाब से तो हर आदमी त्यागी है। नहीं, चूंकि उसका उपभोग हमारे अपने ही लोग कर रहे हैं, मेरे परिवार के लोग कर रहे हैं, तो ये त्याग नहीं है, चाहे मैंने सन्यासी ग्रहण क्यों ना कर लिया हो। लेकिन अगर मैंने जो छोड़ा है उसको समाज को दे दिया, दूसरों में वितरित कर दिया, तब ये त्याग है, तब सही मायने में त्याग है। फिर उसके लिए कोई बहुत बड़ी संपत्ति की जरूरत नहीं है। आप किसी भी चीज को जो छोड़ देते हैं दूसरों के हित में, वो त्याग बन जाता है, और जब तक वो मुझसे जुड़ा हुआ है तब तक वो त्याग नहीं है। पहली बात। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है मित्रों, जो खासकर मैं यंग जनरेशन से जो शेयर करना चाहूंगा, वो ये कि देखिए होता क्या है कि त्याग 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 कहने से ना हम अपने को बेचारा बना लेते हैं, बेचारा बना लेते हैं, बेवजह बेचारा बना लेते हैं। 8 घंटे पढ़ रहा हूं, त्याग कर रहा हूं, सिनेमा नहीं देख रहा हूं, त्याग कर रहा हूं, दोस्तों के साथ गप नहीं मार रहा हूं, त्याग कर रहा हूं, अपना गांव छोड़कर के पढ़ने के लिए शहर चला गया हूं, त्याग कर रहा हूं। अरे भैया, ये कैसे त्याग हो गया? ये त्याग नहीं है, इसको दिमाग से निकालिए। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि मैं त्याग कर रहा हूं, तो उस त्याग का जो फल है वो संघर्ष में कन्वर्ट नहीं हो पाता। फिर तो हम लगता है ना जैसे कि हमने यही बहुत बड़ा काम कर दिया, त्याग करके ही हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, यही अपने आप में काम बन गया। तो लगता है कि अब हम सफल हो या ना हो, परिणाम मिले या नहीं मिले, लेकिन हम महात्यागी तो हो गए, हमने इतना बड़ा काम तो कर दिया। अब ये बात अलग है कि हमने जिस चीज के लिए त्याग किया है, जिसे हम कह रहे हैं वो त्याग कुछ नहीं है, वो उसमें हम क्या कर रहे हैं? हम सब छोड़ छाड़ करके पढ़ने तो चले गए हैं शहर में, लेकिन हम शहर में जाकर के क्या कर रहे हैं? तो ये त्याग नहीं है, इसे आप थोड़ा सा दूसरा नाम दे करके देखिए। मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं श्रम कर रहा हूं, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं, हालांकि ये संघर्ष भी नहीं है। श्रम और संघर्ष में बहुत फर्क होता है। श्रम तो होता है जब हम अपने तरफ से काम करते हैं, संघर्ष वो होता है जब विरोधी शक्तियों का सामना करते हैं। अगर मेरे सामने कोई विरोधी शक्ति नहीं है तो मैं संघर्ष नहीं कर रहा हूं, मैं तो श्रम कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं। जैसे किसान अपने खेत में मेहनत करता है, वो संघर्ष नहीं करता है, राइट? तो मित्रों, मुझे लगता है कि यदि हम इन बातों को अच्छे तरीके से समझ लें तो हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है वो थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाएगा। सच बताऊं तो मैं दुनिया के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन अपने बारे में मैं जरूर कह सकता हूं, अपने और अपने लोगों के बारे में जरूर कह सकता हूं कि हम लोगों के दिमाग के अवचेतन में कहीं ना कहीं जो भाग्यवाद है वो बहुत बुरी तरह से भरा हुआ है और इसने हमें बहुत कमजोर बनाया है। मित्रों, मेरे पास मेल भी आए, कुछ मेल आए, उस विषय पर मैं अलग से बात नहीं कर पा रहा हूं। उसमें यही था कि सर मैंने देखा है कि बहुत से यंग लड़के जो आईएएस की तैयारी करते रहते हैं वो ज्योतिषियों के पास जा जा करके अपनी पत्री दिखाते रहते हैं कि मैं बनूंगा कि नहीं बनूंगा, क्या होगा, इसके बारे में कुछ बताइए। तो सच पूछे तो मैं उसी के बारे में बता रहा हूं इनडायरेक्टली। तो ये जो भाग्य है कि पहले से लिख दिया गया है तो अब जो लिख दिया गया है वही होगा, तो यह फिर क्षति हो गई हमारी। अब मुझे में नहीं लिखा हुआ है कि मैं बनूं तो अब क्या करूं, तो मैं अपने को त्यागी बना लेता हूं कि नहीं यार मैं बहुत त्यागी हूं और मैं इसी का फिर गुणगान करता हूं। मैंने देखा है कि जो लोग कुछ नहीं बन पाते या नहीं कर पाते वो फिर अपने त्याग का गुणगान करते हैं, अरे मैं इतना पढ़ता था, अरे मैंने तो ये किया। मैं अपनी छोटी छोटी चीजों को बहुत ही महान करके दिखाना, क्योंकि क्षति की पूर्ति करनी है ना, और ये दिमाग हमारा बड़ी चालाकी के साथ कर लेता है। दिमाग तो इस मायने में अद्भुत है, बहुत चालाक है, यूं कह लीजिए कि हमारे इंस्ट्रक्शन पर ही करता है, तो वो बहुत समझदार भी है, हम जो चाहते हैं वो हमको प्रोवाइड कर देता है। तो दोस्तों, मुझे वह वाक्य पीवी संधू का बहुत अच्छा लगा था, बहुत प्यारा लगा था और बड़ा क्रांतिकारी जैसा भी लगा था। तो कई दिनों से मैंने ये सुना था, तो आज मन छटपटाने लगा सुबह से ही कि नहीं मैं इस पर आज बात करूंगा। तो इस पर मैंने आप लोगों से कुछ बातें की हैं, प्लीज आप लोग भी इस पर सोचिए। हमेशा मैं आप लोगों को इस बात के लिए कहता रहता हूं कि आप लोग भी सोचिए, मेरी बातों को ज्यों का त्यों मत मान लीजिए कि सर कह रहे हैं तो सही ही होगा, नॉट एट ऑल। मेरे लिए सही है, मुझे जो सही लग रहा है मैं वो बोल रहा हूं, इसमें से आप अपने लिए सही चीज निकालिए। तो मित्रों, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, आज शुक्रवार है, 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए आप सबसे अनुमति चाहूंगा, आप लोगों की ये 2 दिन बहुत सुखद हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।